तो आपकी गांठ में कुछ है क्या? है तो नहीं, लेकिन जबरदस्ती हम लोग मानते हैं। तो महाराज जी कभी कभी कहते कि देवकी जी अपनी चीज न हो, पराए माल पर अधिकार जमा हो तो पुलिस के द्वारा पकड़े जाओगे कि नहीं, जेल में जाना पड़ेगा कि नहीं। तो वो हो गया है हमारे साथ। अगर भौतिकवाद की दृष्टि से विचार करो तो पंच भौतिक तत्वों से बने हुए सारे शरीर, एक की तो कौन कहे, सब शरीर प्रकृति के हैं, अपना उसमें से कुछ नहीं है। सूर्य के द्वारा प्रकाश और ताप मिले, प्राण वायु के द्वारा सांस लेने को मिले, धरती के ऊपर आश्रय मिले, अवकाश आकाश के नीचे अवकाश मिले, जिसके बल पर ये शरीर चलता है, निभता है, रहता है, बनता है, घटता है, बिगड़ता है, और जिसके विधान से अलग अलग तत्व फिर अलग अलग तत्वों में जाकर शामिल होकर खत्म हो जाते हैं। तो जिस प्रकृति के विधान से अणु परमाणुओं के संगठन से शरीरों की रचना हो गई है, उसी प्रकृति के विधान से अणु परमाणुओं का विघटन हो जाता है और शरीर लुप्त हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। तो नाश क्या हुआ, बहुत से तत्व जुट गए तो एक आकृति बन गई, और अलग अलग तत्व बिखर गए तो आकृति लुप्त हो गई। नाश क्या हुआ, कुछ नहीं। और बना क्या, कुछ नहीं। अलग अलग अणु परमाणुओं को जुटा दो तो एक आकृति बन गई, और वे बिखर गए तो आकृति खत्म हो गई, ना कुछ बना ना कुछ बिगड़ा। तो ऐसे भौतिकवाद की दृष्टि से शरीर जगत का है। अब जगत का है, जगत का न मानो, अपना मानो, उसके ठेकेदार बनो, तो तुम्हारे सिर पर उसकी रक्षा का, उसके भरण पोषण का भार चढ़ जाए। बन गया, बिगड़ गया, बदल गया, कोई नई बात नहीं हो गई। प्रकृति में अनवरत निर्माण और विनाश का क्रम चल रहा है। अब उसमें तुम मोह कर लो, आसक्ति कर लो, बनने बिगड़ने का जो अनवरत क्रम है, जिसका नाम सृष्टि है, उसके विधान में दखल डालना चाहो तो मृत्यु के भय से भयभीत रहो, यम यातना से पीड़ित रहो। कैदी होना हो गया कि नहीं, जीना चाहते हैं और जीने के लिए अब प्राण शक्ति है नहीं, तो जीना चाहते हैं और मरना पड़ रहा है। और शरीर जब अत्यंत कष्टदायक हो गया तो मरना चाह रहे हैं और सांस चल रही है। बेबसी है कि स्वाधीनता है, कैदी होना हो गया। तो पराए माल पर अधिकार जमाओ, मेरा है मेरा है, तो कैद में कैदी होना पड़ेगा, दंड सहना पड़ेगा, विकारों की उत्पत्ति होगी, उनके भार से पीड़ित होना पड़ेगा। इसलिए शरीरों के रहते रहते उनके साथ हो करके राग निवृत्ति के साधन का जो अवसर मिला है हम लोगों को, उन शरीरों के निर्वाह के लिए शुद्ध भौतिकवादी हम सभी भाई बहनों को होना चाहिए। इस अर्थ में कि जैसे मुझको एक शरीर की रक्षा अभिष्ट है, ऐसे ही प्रकृति को सारे शरीरों का भरण पोषण पालन रक्षण अभिष्ट है। मानना चाहिए ऐसा, और ऐसा मान करके जो सेवा करने के लिए सभी को अपना मानते हैं, उन पर एक शरीर के भरण पोषण का भार नहीं रहता है, उसकी देखभाल वो करने लग जाते हैं जिनकी वो है। और तत्व की दृष्टि से आध्यात्म जीवन में प्रवेश पाने के लिए जब आप इस साधन सूत्र को स्वीकार करेंगे कि भाई मैंने शरीरों की सहायता से जगत के संपर्क का सुख लिया था, तो मेरे भीतर आसक्ति पैदा हो गई थी, प्रकृति के विधान से, प्रकृतिपति के विधान से, सृष्टिकर्ता जीवन दाता के विधान से एक चांस और दिया गया कि अच्छा अब तक मानव जीवन पा करके भी जीवन मुक्ति का पुरुषार्थ तुमने नहीं किया था तो कोई बात नहीं, माफ किया गया। अब एक अवसर और ले लो और देखो अब की बार जो शारीरिक सामर्थ्य ले करके जगत में रहने का मौका मिले तो नई नई आसक्ति पैदा मत करना, पुराने रागों को मिटाने का पुरुषार्थ कर लेना। इस विधान से हम लोगों को एक चांस और मिला है तो अब क्या करें। तो शुद्ध विचार की दृष्टि से निज विवेक का आदर करते हुए इस सत्य को स्वीकार करें कि मिला हुआ शरीर जो है वो मेरा नहीं है, मेरे साथ सदा के लिए रहने वाला नहीं है और मेरी आवश्यकता को पूरी करने वाला भी नहीं है। क्योंकि आपकी आवश्यकता क्या है तो आपका जो मैंपन है, अलौकिक तत्वों से रचा हुआ मैंपन, अविनाशी जीवन की अभिलाषा वाला मैं, परम प्रेम की मधुरता का आस्वादन करने के लिए लालायित है जो मैं, उस मैं की आवश्यकता स्थूल तत्वों से रचे हुए शरीर पूरी करने में कोई मदद नहीं कर सकते। आज तक मदद नहीं किया इन्होंने। मैंने एक बार रासलीला में कंस की सभा देखी थी तो अहम का बड़ा भारी अभिमानी, उसको प्रतीक रूप में भी ले सकते हैं और कथा में तो विश्वास चलता ही है, विश्वासी होकर मैं देखती हूँ तो विश्वास भी लेती हूँ। तो बड़ा भारी अहंकारी, सामर्थ्य का जो अनंत स्रोत है उसी का दिया हुआ बल लेकर अहंकार बड़ा पुष्ट हो गया, मैं बड़ा बलिष्ठ। तो सभा में बड़ी गर्जना हो रही है, किस बल पर? अनंत बलशाली के दिए हुए आंशिक बल पर। अनंत बलशाली ने आंशिक बल दे दिया तो उसी के बल पर अहंकार का बड़ा भारी गर्जन हो रहा है, अभ्यर्थना हो रही है, भयभीत सभा स्तुति कर रही है, सब हो रहा है। इतनी ही देर में समाचार आया कि पूतना मारी गई। तो बड़ा भारी बल, शरीर का बड़ा भारी बल, लेकिन जैसे ही समाचार मिला कि पूतना मारी गई तो वह अहंकार जो था वो एकदम कांप गया। तो कंस जिस सिंहासन पर बैठे थे वो उठ करके खड़े हो गए, घबरा गए, हाथ यूं घबरा के फैलाया, अस्त्र शस्त्र सब नीचे गिर गए और पूरा शरीर थरथर कांपने लगा। किससे? इस भय से कि कौन सा ऐसा बालक हो सकता है 6 दिन का जन्मा हुआ जो कि इसको मार सकता है। तो क्या कहा तुमने, क्या समाचार सुनाया तुमने, क्या सचमुच किसी बालक ने पूतना को मारा? तो हाँ मारा। तो इस समाचार को सुन करके सब वैभव खत्म हो गया, किसी ने उसका साथ नहीं दिया और मृत्यु के भय से वह कांपने लगा एकदम कि ये कौन हो सकता है जो इतनी छोटी उम्र में पूतना को मार सकता है, क्या जाने आगे चल करके वह मुझे भी न मार डाले। तो मृत्यु का भय और मृत्यु रहित जीवन की आवश्यकता शरीर के बल ने पूरी नहीं की, बलशाली दरबारियों ने पूरी नहीं की, बहुत ही बलिष्ठ और जोरदार सेना की शक्ति से भी यह बल नहीं, यह भय नहीं मिटा। ठीक है, ठीक है। इसलिए वो तो एक कथा है, वह अपने लोगों को उदाहरण के लिए सामने रखकर सोचना चाहिए कि अभी तक आपने जो कुछ बल का संपादन किया इस जगत में रहकर, अभी इसी क्षण में इसी स्पॉट पर बैठ करके एक क्षण के लिए भीतर झांक कर देखो तो किसी भी बल के द्वारा अविनाशी जीवन की आवश्यकता पूरी हुई क्या? किसी भी संगी साथी बुद्धिमानी और योग्यता के द्वारा मृत्यु के भय का नाश हो गया क्या? नहीं हुआ न? देखिए, कुछ दिन पहले अपोलो 11 आपने नाम सुना होगा, यान बना था, चंद्रलोक की यात्रा हुई थी। तो चंद्रलोक के यात्री जो थे वे जब लौट करके आ गए तो सारा फिल्म बनाया गया, और डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो चलते हैं, अच्छी अच्छी बातों का प्रदर्शन विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के सामने कराया जाता है। तो विदेश से एक टीम आई थी 5-7 लोगों की, और विविध प्रकार के फिल्म्स वे लोग लाए थे, महाविद्यालयों में दिखा रहे थे, हमारे यहाँ भी आए थे, वहाँ भी दिखलाया गया था। तो उसमें सब कुछ देखने के बाद चंद्रलोक के यात्री जब धरती पर आ गए थे, फिल्म सारा तैयार हो गया था, दिखाने के लिए जा रहा था, तो उनकी थोड़ी बातचीत हुई थी, तो उनसे बातचीत की गई और वो भी रिकॉर्डेड था और वो भी हम लोगों ने देखा और सुना बातचीत करने का। तो उनसे पूछा गया कि जब आप वहां पर पहुंच गए चंद्रलोक पर तो आपको कैसा लगा? तो उसमें एक सज्जन जो बातचीत कर रहे थे वो कहने लगे कि जब हम वहां पहुंच गए तो पहले तो उस चंद्रलोक में शरीर को संभालने के लिए धरती का जो आकर्षण है और यहाँ का जो इंतजाम है वो था नहीं, तो उसके ऊपर हम सीधे खड़े नहीं हो सकते थे। तो जमीन पर खूंटी गाड़ी गई थी और उसको पकड़ पकड़ के किसी तरह से मैंने, हम लोगों ने, सबने अपना अपना बैलेंस संभाला। बड़ी तेज हवा थी, सब कुछ उड़ा जा रहा था, तो पेट के बल फट करके खूंटा पकड़ के अपने को संभाल लिया। जब होश संभाला और समझ में आया कि हम चंद्रलोक पर पहुंच गए हैं और अब हम स्थिर हो गए हैं, अब देख सकते हैं, अब अध्ययन कर सकते हैं, तो वो सज्जन कहने लगे कि मेरी आंखों के आगे धरती पर से विदा करने वाली मंडली दिखाई देने लगी, हम लोगों की, चारों पांचों की स्त्रियां और बच्चे किस प्रकार से हर्षपूर्वक हम लोगों को हाथ हिला के विदा कर रहे थे, वो सब हम लोगों को दिखने लगा। और मैं सोचने लगा कि यह जो मेरा एयरक्राफ्ट है ये लौट करके अपनी मशीन से जुटा नहीं तो हम धरती पर उतर नहीं पाएंगे। हिसाब तो उन लोगों ने बहुत अच्छा किया था, कैलकुलेशन उनका बड़ा पक्का था, और जिस मशीन में से मदर क्राफ्ट करके उसको बता रहे थे कि उसके द्वारा ऊपर चढ़े और फिर उसको छोड़ के चंद्रलोक पर उतरे, तो उसकी सेटिंग ऐसी थी कि वो घूम रही थी, और हिसाब ऐसा किया हुआ था कि इतनी तारीख को इतने बजे हम लोग चंद्रलोक को छोड़ करके आएंगे तो ये घूमती हुई मशीन हमें पकड़ लेगी और धरती पर ले जाएगी। तो वो सज्जन कहने लगे कि एक बार मेरे भीतर ख्याल में आया कि हम यहाँ से उतरे और हिसाब में थोड़ा सा भी फ्रैक्शन ऑफ सम सेकंड, कुछ क्षणों के कुछ अंश का भी फर्क पड़ गया तो वो मदर क्राफ्ट पास कर जाएगी, हम उससे जुट नहीं पाएंगे, तो यूं ही घूमते घूमते आकाश में खत्म हो जाएंगे, तो हाय हमारी स्त्रियां, हमारे बच्चे प्रतीक्षा करते रहेंगे, हम नीचे उतर नहीं पाएंगे। तो उस सज्जन ने बताया कि जैसे ही ध्यान में आया मैं एकदम मृत्यु के भय से भयभीत हो गया। तो सुना मैंने, बड़ा आनंद आया था, पूरा सब कुछ देखा हम लोगों ने, धरती पर से वो क्राफ्ट कैसे उड़ा है, कैसे अंतरिक्ष में गया, कैसे उसने मदर क्राफ्ट को छोड़ा, कैसे वो चंद्रलोक पर उतरा, कैसे वे लोग हवा में डोलते डोलते खुटी पकड़े, ये सब मैंने देखा था उसी में फिल्म में। जब वो सज्जन कहने लगा कि मैं तो एकदम भयभीत हो गया और मुझे अपनी स्त्री और अपने बच्चों का मुखड़ा दिखाई देने लगा और भीतर भीतर एकदम से घबरा गया मैं कि हाय हम उतर नहीं सके धरती पर, तो हमारी स्त्री, हमारे बच्चे हमारी प्रतीक्षा में रह जाएंगे और उनको हमारी मृत्यु का संवाद सुनना पड़ेगा और बड़ा दुख होगा। तो एकदम से मृत्यु के भय से आक्रांत और कुटुंब की आसक्ति से आक्रांत और चंद्रलोक पर पहुंच जाने का सारा हर्ष समाप्त हो गया। तो वो तो फिल्म था, दिखा उखा करके लोग चले गए। मैं बहुत देर तक सोचती रही। मैंने कहा, हाय रे मनुष्य, तूने क्या किया? करोड़ों करोड़ों की संपत्ति बहाई गई संसार की और 30-30 वर्षों से बड़े बड़े प्रतिभाशाली वैज्ञानिक परिश्रम करते करते एक क्राफ्ट बनाए और बड़ी बहादुरी के साथ संसार ने जय जयकार करके तुमको विदा किया। बड़े शान से तुम चंद्रलोक के यात्री बने और वहां पहुंचकर मृत्यु का भय और वहां पहुंचकर कुटुंब की आसक्ति, तो सारा परिश्रम, सारी योग्यता, सारा खर्च मिट्टी में मिल गया कि नहीं? उससे ज्यादा सामर्थ्य कोई अपने लोगों के पास है जी? तो किसके बल पर पंच भौतिक तत्वों के बने हुए शरीर को लेकर अभिमान में फिरते हो भाई? उतनी बड़ी योग्यता और उतनी बड़ी शक्ति और उतनी संपत्ति और उतनी प्रतिभा, सबकी उपलब्धि क्या हुई? तो मृत्यु का भय। तो यह सब बातें जो हम लोगों के सामने आ रही हैं, तो विवेकशील होने का अर्थ क्या है? विवेकशील होने का अर्थ यह है कि इन घटनाओं से हम सीखें। राजकुमार सिद्धार्थ के सामने और क्या हुआ था? एक मृतक को देखा तो उस जाग्रत पुरुष ने यह जान लिया कि जैसे एक शरीर मृत्यु का ग्रास बन गया है, वैसे सभी शरीर मृत्यु के ग्रास बनेंगे। एक ही घटना ना उसने देखी थी, और तो घटना देखी नहीं थी। एक ही वृद्ध शरीर को उसने देखा तो उसने अपनी युवावस्था में वृद्धावस्था का दर्शन कर लिया। तो एक मृतक को देखा, एक वृद्ध को देखा, एक रोगी को देखा, और एक ही एक घटना का प्रभाव उस पर इतना जोरदार हुआ कि उस वीर पुरुष ने हे क्षणभंगुर भव राम राम कहकर संसार से विदा लिया, तो फिर उलटकर उस संसार की ओर देखा नहीं। मैं त्रिविध दुख विनिवृत्ति हेत बांधू अपना पुरुषार्थ सेत, सर्वत्र उड़े कल्याण केत, तब हो मेरा सिद्धार्थ नाम, हे क्षणभंगुर भव राम राम। हो गया। और अपने लोगों की दशा क्या है? ऐसी हंसी आती है कभी कभी मुझे, और इतनी दया आती है अपने पर, है कि बेचारा गरीब आदमी कहाँ जाके फंस गया। क्या कहते हैं लोग? सुनते तो हैं, और इनडायरेक्टली सत्संग की मंडली पर थोड़ा कटाक्ष भी है, क्योंकि अपने उसी में शामिल है, इसलिए थोड़ा नरम भाषा बोलते हैं। तो कहते हैं कि क्या बताएं, इतना प्रचार है और इतना सब प्रवचन चल रहा है और इतनी बड़ी बड़ी मंडलियां बनी हुई हैं, और क्षमा कीजिएगा, आप लोगों ने भी कम परिश्रम नहीं किया है। कहते भी जाते हैं, क्षमा भी मांगते जाते हैं। तो ये सब हो रहा है, लेकिन समाज की दशा जो है वो तो वैसी ही दिख रही है। तो पहले समूह को दोषी बना के तब उसमें अपनी गुंजाइश निकालते हैं कि क्या करें, हमारे में भी परिवर्तन नहीं आया। मतलब मैं कोई दोषी नहीं हूँ, सब लोगों का ऐसा ही हाल है, तो हम अपने को भी क्षमा कर देते हैं कि मेरा भी वही हाल है। अब बताओ, विवेक के प्रकाश में देख करके कि भाई जो कुछ बना हुआ है निरंतर बदल रहा है, बिगड़ रहा है, मिट रहा है, और बड़े जो अपने को वैज्ञानिक मानते होंगे और सोचते होंगे कि मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, उन लोगों को जो सच्चे विज्ञान वेत्ता हैं उनका हाल मालूम नहीं है। और नहीं तो बहुत दिन पहले की बात है, 1963 में 1963 में अखिल विश्व का जो वैज्ञानिक सम्मेलन हुआ था, उस वैज्ञानिक सम्मेलन में किसी विज्ञान वेत्ता ने अपने अध्ययन का फल बताया, तो उसने बताया ट्रुथ कांट बी फाउंड बाई ऑब्जेक्ट एनालिसिस, अणु परमाणुओं के विश्लेषण से सत्य नहीं पाया जा सकता। तो कैसे होता है भाई? तो अणु परमाणुओं के संगठन से बने हुए शरीर को प्रयोगशाला में ले जाके काट कूट दो तो मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। अनुभवी संत ने बहुत ही प्रैक्टिकल प्रयोग हम लोगों को बताया कि भाई ये तो जिसकी चीज है उसके लिए रहने दो, तुम तो अपने पर इतना ही उपकार करो अपने पर, कि पराई चीज को अपनी मत मान लेना, इतने ही उपकार से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो भौतिकवादी हो तो विश्व जीवन में मिला दो इसको, और ईश्वरवादी हो तो परमात्मा का मान लो इसको, और अध्यात्मवादी हो तो तुम्हारा तो त्रिकाल में इससे संबंध है ही नहीं। तो दार्शनिक दृष्टिकोण, भौतिक पहलू ले लें, अध्यात्म जीवन ले लें, आस्तिक जीवन ले लें, कोई अंतर नहीं आता है। जो जीवन का सत्य है, जो दार्शनिक स्टैंड है, वहां से खड़े होकर के जीवन को देखेंगे नहीं और जगत के साथ जो करना चाहिए वो जगत के साथ न करो, शरीर के साथ जो सही दृष्टिकोण रखना चाहिए वो दृष्टिकोण न रखो, और परमात्मा के मानने वाले हो तो परमात्मा के प्रति जो भाव रखना चाहिए वो भाव न रखो, तो कोई ऐसा जादू मंत्र है कि तुम्हारा दुख मिट जाएगा जी? तो क्रिया शक्ति मिली है तो शुद्ध भौतिकवाद की दृष्टि से सेवा करने के लिए सभी को अपना मानो, तो भेदभाव नाश हो जाएगा तो चित्त शुद्ध हो जाएगा। तो विचार की दृष्टि मिली है, विवेक का प्रकाश मिला है, तो नाशवान को नाशवान जानकर, यहाँ मानने की बात नहीं है, कल्पना और अनुमान की बात नहीं है, देखते देखते संभालते संभालते सिर के काले बाल सफेद होते चले जा रहे हैं बहुत ही नेचुरल प्रोसेस में, तो मानना पड़ेगा कि जानी हुई बात है जी,
जानी हुई बात
है। तो निज विवेक के प्रकाश में नाशवान को नाशवान जानकर उससे अपना संबंध तोड़ना ही पड़ेगा, उस पर से अपना अधिकार उठाना ही पड़ेगा, उसकी ममता का त्याग करना ही पड़ेगा और उसका सहारा छोड़ना ही पड़ेगा। तो जो नाशवान का सहारा छोड़ देता है उसमें अविनाशी तत्व अभिव्यक्त हो जाता है। अमर जीवन का अभिलाषी नाशवान का सहारा छोड़ देता है तो उसी में विद्यमान अविनाशी तत्व प्रकट हो जाता है। जो अनादि अनंत जीवन का जिज्ञासु है वो उत्पत्ति विनाश युक्त का सहारा छोड़ देता है। संसार को छोड़ के भाग जाओ ऐसा नहीं कहा गया, संपत्ति उठाकर गंगा में डाल दो ऐसा नहीं कहा, शरीर को टुकड़े टुकड़े काट दो ऐसा नहीं कहा, इसमें तुम्हारा कोई बस नहीं चलेगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये जिसके हैं उसकी शक्ति से और जिसके हैं उसके विधान से कुशलता पूर्वक चल रहे हैं, चलते रहेंगे। तुम नहीं थे तब भी सृष्टि चल रही थी और फिर तुम नहीं रहोगे तब भी चलेगी कि नहीं चलेगी? तो इसलिए उसमें अपने को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। जिस अपराध से हम सब लोग आसक्ति में, जन्म मरण के बंधन में, इस सीमा में बंध गए हैं, कैदी हो गए हैं, उस कारण को मिटाना है। तो वो कारण क्या है कि मैं अविनाशी जीवन का अभिलाषी हूँ, अमर जीवन की आवश्यकता मुझे है, परम प्रेम की प्यास मुझे है। तो जो अमर जीवन का अभिलाषी है उसको मरणशील का सहारा नहीं लेना चाहिए, इतनी सी तो बात है। ठीक है। अब आप क्या करते हैं, अब अपने लोगों की बुद्धिमानी देखो। शरीर की आसक्ति छोड़ना थोड़ा कठिन लगता है, तो कहते हैं कि क्या है, शरीरों के द्वारा हम अच्छे अच्छे पदार्थों के खाने का स्वाद लेते थे, तो अब तो हम तपस्वी हैं, तो नमक नहीं खाएंगे, तो पकाया हुआ अन्न नहीं खाएंगे, तो स्वादिष्ट चीजें नहीं खाएंगे, तो खट्टा मीठा नमकीन सब एक में मिला के खा लेंगे। कोई बात नहीं, स्वाद की गुलामी से छूटने के लिए आप अगर यह सब करते हैं तो सही बात है भाई, जिससे जैसे बने छूटो। और अगर बिना नमक के खाने का भी एक श्रृंगार बन गया और स्वाद पर विजय पाने का भी एक अभिमान बन गया और लोक लोक ख्याति का भी एक एक भीतर भीतर तृष्णा बढ़ गई, तो हम स्वाद नहीं लेते हैं, हम संग्रह नहीं करते हैं, हम नमक नहीं खाते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं, तो शरीरों के सहारे किए हुए तप का अगर अपने भीतर एक आभास बन गया और उसके बल पर अपने व्यक्तित्व का श्रृंगार बन गया, तो सत्य के नजदीक पहुंचे कि दूर हो गए? दूर हो गए। तो चले थे सत्य को पकड़ने और अशुभ प्रवृत्तियों को छोड़ करके तपस्या स्वरूप और साधन स्वरूप प्रवृत्तियों को पकड़ करके फिर आपने उस नाशवान शरीर को महत्व दे दिया, उसी को पकड़ करके बैठ गए, तो अविनाशी तत्व की अभिव्यक्ति में बहुत देर लग जाती है, बहुत दूरी हो जाती है। इसलिए शरीर की गुलामी छोड़ना है अपने को, इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है। तो कोई साधक आश्रम में आ जाता और स्वामी जी महाराज उसको बैठाते अपने पास और खूब प्यार करते, उसको प्यारे का प्यारा है, कोई भी आया है प्यारा ही है, कहो दोस्त, 5 बरस का बच्चा आ गया तो कहो दोस्त, और 90 बरस का वृद्ध आ गया तो कहो दोस्त, सब दोस्त ही दोस्त हैं, परमात्मा उनके मित्र हैं, तो सारा विश्व मित्र रूप दिखाई देता है, तो कहो दोस्त तुम्हारी क्या सेवा करें। हम लोगों की तरह नहीं, संस्था वाले लोग आते हैं, संस्था वाले लोगों के पास कोई आता है तो वो देखते हैं कि ये कुछ काम करने के लायक है कि नहीं, कुछ पैसा देने के लायक है कि नहीं, तो ऐसा नहीं। स्वामी जी के पास कोई आवे तो उससे पूछेंगे, कहो दोस्त तुम्हारी क्या सेवा करें, तो महाराज जी मैं स्वयं पाकी हूँ, अपने हाथ से बनाता हूँ खाता हूँ, तो ऐसा इंतजाम करा दीजिएगा। अच्छी बात भाई, करा दिया इंतजाम। अब उसका तो कल्याण अभीष्ट है महाराज को, तो उस दिन सभी इंतजाम करवा देंगे, और दूसरे तीसरे चौथे दिन से प्रवचन के समय सत्संग के समय आरंभ करेंगे अपने ऑपरेशन का इंस्ट्रूमेंट। अब काटेंगे उसको तो बात करते करते कहेंगे, हाँ भाई जन्मे थे तो पकाकर खाया था, हाँ भाई आप बड़े स्वावलंबी हैं तो सरकार की बनाई हुई सड़क पर क्यों चलते हैं, सड़क बना लीजिए तो उस पर चलिएगा, हाँ भाई आप स्वावलंबी हैं तो कुर्ता में बटन लगाने के लिए सुई धागा बना लीजिए तो लगाइएगा। क्या बात करते हो तुम, भौतिक तत्वों के आधार पर सांस लेने वाले शरीर, और तुम उसके अभिमानी बनते हो, मैं बड़ा स्वावलंबी हो गया तो जन्मे थे तो पका के खाया था अपने से, और कभी भी दूसरों का सहारा लिया था, तो आज स्वावलंबन का अभिमान क्यों करते हो। तो ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि वो साधक बैठे बैठे पानी पानी हो जाएगा और दूसरे दिन से स्वयं पाकी होने का अभिमान उसका खत्म हो जाएगा, छूट जाएगा, आएगा महाराज जी क्या बात है भाई, कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं महाराज जी, आज से हम अपने से पकाएंगे नहीं, आपसे भोजनालय में खाएंगे। अच्छी बात। तो ये सब कथा सुना करके मैं अपने भाई बहनों को यह दृष्टिकोण देना चाहती हूँ कि शरीर को समाज से स्वाधीन करना चाहो तो कभी संभव नहीं है, लेकिन स्वयं को शरीर से स्वाधीन करना चाहो तो संभव। तो स्वयं को कैसे स्वाधीन किया जाएगा, तो इसको छोड़ दो संसार के लिए और स्वयं शरीरों से, साथियों से, संसार से, समाज से, सेवा प्रवृत्ति के बाद, सही कर्म के बाद जब निवृत्ति की घड़ी आवे तो बिल्कुल शांत हो जाओ, मुख सत्संग में रहो, अकिंचन अचाह अप्रयत्न पूर्वक शरीरों से तादात्म्य तोड़ने की सामर्थ्य आ जाएगी और मैं स्वयं अपने आप में स्वतंत्र अस्तित्ववान हूँ इस बात का दर्शन आपको, इस बात का अनुभव शरीर के रहते रहते हो जाएगा, साधन काल में हो जाएगा और सचमुच जो स्वतंत्र अस्तित्ववान है उसका त्रिकाल में भी किसी अन्य से संबंध नहीं है, ये आपकी अपनी जानी हुई बात हो जाएगी। और मैंने तो संत कृपा से, भगवत कृपा से ऐसा भी देखा है कि त्रिगुणातीत जो संत पुरुष हुए संसार में और उन्होंने कहा कि त्रिकाल में भी सृष्टि न थी न है न होगी। तो जब प्रारंभ में मैं सुनती थी महाराज जी के मुख से तो नहीं सुनती थी, ध्यान ही नहीं देती थी, प्रयोगशाला में से निकल के आई थी तो ये सब बातें अटे कैसे, तो मैं कहूँ क्या जाने स्वामी जी कौन फॉरेन लैंग्वेज बोलते हैं, हम नहीं जानते हैं। सुनती ही नहीं थी, समझती ही नहीं थी, ये तो समझ के पार की चीज है ना, तो बुद्धि में अटे कैसे। जब बुद्धि दृष्टि से असंग हो जाओ, जब सभी दृष्टियों के पार पहुंचो तब उसका पता चले। तो मैं तो बुद्धि के आधार पर सब पकड़ने आई थी तो कैसे पकड़ में आए, समझ में नहीं आए। लेकिन मैंने देखा संत की शरण में बैठकर जीवन का अध्ययन करके साधन सूत्रों को काम में लाकर मैंने देखा कि सचमुच जो आपका वास्तविक जीवन है उस अपने स्वतंत्र अस्तित्व का अनुभव होता है और वस्तुतः उस अनुभव में, उस आनंदमय अस्तित्व के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। दृष्टि गई कि सृष्टि गई। इसी जगह पर गीता भवन 2 नंबर में स्वामी जी महाराज बैठते थे और प्रातः काल 2:30 बजे से साधना शुरू होती थी, 3:30 बजे से मुख सत्संग होता था। उसी काल में उसी जगह महाराज जी की चौकी पकड़कर बैठे ही बैठे क्या जाने कब सब का सब एकदम गायब, सिवाय एक आनंदमय अस्तित्व के वहाँ कहीं कुछ नहीं है, न शरीर है, न संसार है, न सीमा है, न स्थान है, न काल है। वेस्टर्न फिलोसफी में परसेप्शन ऑफ टाइम एंड प्लेस पढ़ने के लिए जाने कितना दिमाग धुन डाला था, कितनी लाइब्रेरी छान डाली थी, कितने आचार्यों ने बड़ा परिश्रम किया था काल और स्थान के परसेप्शन को ना करके साबित करने के लिए। बहुत जोर जबरदस्ती करके, बड़ी बुद्धि लगा करके, हमारे समय में भारतीय दर्शन पढ़ाया ही नहीं जाता था। उस विश्वविद्यालय में जहाँ अध्ययन किया मैंने तो वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ाते थे, पश्चिम दर्शन, तो उसमें काल और स्थान का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, ये व्यक्ति का अहम बनता है तब उसको काल का पता चलता है, तब उसको स्थान का पता चलता है। तो काल और स्थान वो टेबल है, वो स्क्रीन है, वो पर्दा है जिस पर की ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा प्राप्त की हुई भौतिक तत्वों के इम्प्रेशंस बनाए जाते हैं, अंकित किए जाते हैं। तो ये जो सिनेमा का स्क्रीन जैसा होता है, तो वेस्टर्न फिलोसफर ये बताते थे कि समय और स्थान की धारणा जो मनुष्य के भीतर है वो सिनेमा का स्क्रीन है। अब उसके ऊपर चित्र अंकित होंगे तो तुम देखना, और सचमुच तुम विचार करके देख लो, कोई भी मानसिक चित्र जो आपके सामने आवे काल और स्थान के विशेषण से रिक्त होगा, कभी नहीं होगा। कोई भी घटना है तो किसी न किसी काल में है और किसी न किसी स्थान पर है। तो परसेप्शन ऑफ टाइम एंड प्लेस का इतना विवरण पढ़ते पढ़ते दिमाग थक जाए, किसी भी तरह से विवेचन करके इम्तहान पास करके उसे छुट्टी पाया मैंने। जब स्वामी जी महाराज के पास बैठकर जीवन का सत्य सामने आया तब मैंने दर्शनकारों के सिद्धांत को जाना कि सचमुच में ये सृष्टि त्रिकाल में न हुई न है न होगी। इस बात का दर्शन कौन करता है जो शरीरों से और समाज से संसार से सब दृष्टियों से अंतःवाह्य सब करणों से सबसे संबंध तोड़कर सबकी आसक्ति छोड़कर सबका सहारा छोड़कर अकेले हो जाओ तो तुमको उस सत्य का दर्शन मिले। तो जीवन का जो आध्यात्मिक सत्य है, अध्यात्म दर्शन का जो सत्य है, वह कल्पना नहीं है, हवाई बातें नहीं है, आर्म चेयर स्पेकुलेशन की चर्चा नहीं है, वह तो तुम्हारे जीवन का ऐसा ठोस सत्य है कि एक बार उसका अनुभव हो जाए तो फिर कभी भ्रम पैदा नहीं होता। तो उस जीवन के दर्शन के लिए तैयार तो हो जाओ, तो सो नहीं। हमारे पास हमारे वर्ग के भाई बंधु आते हैं तो कहते हैं कि देखिए मैं बहुत ही प्रपंच में फंसा हुआ हूँ और मुझ में कोई अच्छाई नहीं है और मुझको अच्छाई का दर्शन करा दो। तो कोई कहे कि मैं तो आंख बंद करके बैठा हूँ और मुझको सूर्य का प्रकाश दिखा दो। तो ऐसी बुद्धिमानी का इतना दुरुपयोग हम लोग कर रहे हैं, बुद्धिमान होने का अभिमान भी और बुद्धिमानी का दुरुपयोग भी, और फिर भी जीवन का दुख मिटे तो कोई जादू मंत्र नहीं है, कोई तमाशा नहीं है। मानव जीवन ये खेल तमाशे के लिए नहीं बना है, बड़ा ही मूल्यवान है। और मुझको संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या मालूम होता है, तो मेरा ये अहम ईश्वर की महिमा का कोई वारा पार नहीं है। वायुमंडल के संसार को, एयर वर्ल्ड और वाटर वर्ल्ड, समुद्र के भीतर और धरती के भीतर और हवा के भीतर, आकाश में और ग्रह नक्षत्रों के वर्ल्ड में रिसर्च होते जा रहे हैं, खोज करते जा रहे हैं और बड़ा बड़ा नाम और बड़ी बड़ी उपाधि लेकर लोग बैठते हैं। और थोड़ा थोड़ा मैंने भी पढ़ा है, मेरा भी बहुत इंटरेस्ट था। तो सब में जितना जितना आश्चर्य है भाई, वो सब के सब सीमित और भौतिक सीमा के भीतर है। सबसे अधिक आश्चर्यजनक रचना आपकी अपनी है, मनुष्य का ये मैंपन है जो संसार के तत्वों से बने हुए शरीर को लेकर इस धरती पर विचरण करते हुए अनंत अविनाशी जीवन के आनंद का भी अनुभव कर सकता है और अनंत महत्ववान, अनंत ऐश्वर्यवान, अनंत माधुर्यवान परमात्मा का प्रेमी होकर उनके साथ प्रेम के आदान प्रदान का प्रेमालाप कर सकता है, आदान प्रदान कर सकता है, उनकी लीला में भाग ले सकता है, अपने प्रेम रस से उनको आनंदित कर सकता है, उनके प्रेम रस से स्वयं आनंदित हो सकता है और सदा सदा के लिए उस अनंत प्रेम सागर में डुबकी का आनंद, नितनव प्रेम रस का आनंद ले सकता है। तो इतना बड़ा आश्चर्य जो आपकी अपनी रचना है उस पर दृष्टि डालो नहीं। उस आश्चर्यजनक रहस्यमय अनंत तत्व की अभिव्यक्ति का पुरुषार्थ करो नहीं तो आकाश में खोजते फिरो, समुद्र में डुबकी लगाते फिरो, धरती की खान खोजते फिरो, कोई सीमा लगेगी नहीं लगेगी। तो महाराज कभी कभी मुझको कहते कि देवकी जी इस भौतिक विस्तार की भी सीमा इतनी बड़ी है कि मनुष्य सब जान नहीं सकता है। रिसर्च करने वाले करते रहते हैं, उपाधियां देने वाले हम लोग देते रहते हैं, ताली बजाने वाले ताली बजाते रहते हैं, कि भौतिक शक्ति की भी सीमा इतनी अधिक है कि उसमें आदमी खो जाए, बुद्धि की सीमा हो जाए, पता ही न चले। लेकिन तुम्हारे भीतर जो अलौकिक तत्व विद्यमान है वो तो सारे संसार से बड़ा है भाई। तो उसके विकास का उपयोग, उसके विकास का पुरुषार्थ थोड़े ही दिनों में हम भाई बहनों को कर लेना चाहिए। और उसके विकास का क्या समय लगेगा, क्या श्रम लगेगा, क्या खर्चा लगेगा, तो कुछ नहीं। आवश्यकता जागृत हुई और अंधकार मिटा, ईश्वर का सहारा लिया आपने और वे प्रकट हुए। जिस नाम से पुकारेंगे आप उत्तर दे देंगे, जिस भाव से मानेंगे वो पार लगा देंगे, जो आपकी अभिलाषा होगी उनसे प्रेम के संबंध में वो सारी पूरी करने में अपने को निछावर कर देते हैं। तो संत कबीर कहते हैं, मन ऐसा निर्मल भया जैसा गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो प्रभु के प्रेम में कबीर खो गए और वो प्रेमास्पद जो है वो कबीर के प्रेम का आदर करने के लिए और अपने प्रेमी को संभालने के लिए कबीर कबीर पुकारता हुआ पीछे पीछे फिर रहा है। तो प्रेमी प्रेमास्पद हो गया, प्रेमास्पद प्रेमी हो गया, इस अलौकिकता को इस जीवन में अनुभव नहीं किया तो मनुष्य होकर क्या। अब शांत हो जाइए।